भवानि शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। तो एक तो ये दो मैंने प्रिंट कर लिए थे, आप उसमें शेयर कर लें। तो रामायण जो है वो अभी तक हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया है कि रामायण केवल पढ़ने का और सुनने का ग्रंथ नहीं है, रामायण जो है वो समझने का और समझ करके प्रयोग करने का ग्रंथ है। अगर रामायण को हम लोगों ने समझा नहीं और समझ करके प्रयोग नहीं किया तो बस हम सुना देंगे, आप सुन लोगे, हम अपने घर चले जाएंगे, अगले हफ्ते फिर मिल लेंगे। तो अब एक नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हम जब भी मिलेंगे बीच बीच में तो आई विल पिक अप अ चौपाई और अ दोहा जो बहुत ही स्ट्रांग होगा और इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे और हम लोग इसको रिसाइट करके कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप इस चौपाई को पढ़िए,
करहिं पाप पावहिं दुख भय
भय रुज शोक वियोग। तो रेफरेंस है कि रामायण करही पाप पावही दुख भय रुज शोक और वियोग। रेफरेंस क्या है कि जो काकभूषणी है वो गरुड़ को रामायण सुना रहे हैं। तो रामायण केवल तुलसीदास ने लिख करके ही नहीं है, रामायण में शिव पार्वती को भी वही रामायण सुना रहे हैं, तुलसीदास जो उनके श्रोता बैठे हैं उनको भी वही रामायण सुना रहे हैं, काकभूषणी जो कौआ हैं वो गरुड़ को भी वही रामायण सुना रहे हैं। तो रामायण के तीन चार रेफरेंसेस हैं, श्रोता और वक्ता दो चार ग्रुप हैं, वी विल डिस्कस दैट कि वो एक एक ग्रुप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो चौपाई है ये उस कॉन्वर्सेशन में आई है जहाँ पर काकभूषणी गरुड़ को रामायण सुना रहे हैं। तो इस चौपाई ये बहुत ही पावरफुल चौपाई है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पाप करोगे तो आपको दुख मिलेंगे और दुख को आगे उन्होंने डिफाइन किया है कि क्या क्या दुख है, भय रुज, रुज मतलब बीमारियां, शोक मतलब चिंताएं और वियोग मतलब लोगों के जाने के बाद जो हमें पैंग्स ऑफ सेपरेशन होता है। तो पाप एक तो होता है सामाजिक पाप, झूठ मत बोलो, बड़ों की अनादर मत करो, चोरी मत करो, ये है सामाजिक सोशल मॉरल साइंस में जिसको हम लोगों को सिखाते थे। इसके ऊपर एक होता है धार्मिक पाप, जो अलग अलग धर्म कुछ एक्ट को पाप मानते हैं, वही एक्ट एक धर्म के लिए जस्टिफाइड है लेकिन वही एक्ट किसी और धर्म के लिए वेरीफाइड होगा। जैसे हम लोग अगर हिंदू धर्म की बात करें तो देवी देवताओं का अनादर मत करो, मंदिर में चप्पल पहन करके मत जाओ, जीव हत्या मत करो, तो ये सारे धार्मिक पाप हैं। अलग अलग समाज के पाप अलग अलग समाज के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, धार्मिक पाप अलग अलग धर्म के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अब इन दोनों के ऊपर एक है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक पाप। आध्यात्मिक पाप की डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, जो रामायण जिस पाप को डिफाइन करने की कोशिश करती है वो स्पिरिचुअल लेवल के पाप हैं, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो कोई पढ़ के बताएं, सेकेंड लाइन पाप को जो डिफाइन किया गया है, तो पाप को हमने ब्रेक किया है, पा धन, संस्कृत अगर आपने पढ़ी है तो उसमें वो ब्रेक करते थे ना संधि विच्छेद, तो पाप को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो प धन अप, ये उसका है। अब आगे पढ़े उसको,
जो क्रिया मानसिकता हमें पालन करने वालों से अलग कर दे,
राइट। और इंग्लिश में
दोज एक्शंस एंड थॉट्स दैट क्रिएट अ बैरियर बिटवीन अस एंड ब्रह्म।
तो पाप मतलब पा अप, पा मतलब पालन करने वाला और अप मतलब अलग करने वाला। अगर आप लोगों ने कारक पढ़े हों तो उसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान ऐसे, उसमें एक अपादान कारक आता था, अपादान मतलब जो अलग कर दे, अप। तो जो पालन करने वाले से आपको अलग कर दे, अध्यात्म में उसको पाप कहा गया है। ये अध्यात्म की डेफिनेशन है, मैं सामाजिक पाप को कमेंट नहीं करना चाह रहा हूं, वो जैसा समाज में है चल रहा है, जो धर्म के पाप है वो अपनी जगह चल रहे हैं, मेरा उसमें कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन अध्यात्म में जो पाप को डिफाइन किया गया है वो क्रियाएं या वो मानसिकताएं, दोज एक्शंस एंड दोज थॉट्स जो हमें पालन करने वाले से अलग कर दें, उसको पाप कहते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज में इसको एग्जाम्पल लेके, जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे हैं, तो बच्चा पैदा हुआ तो हम उस बच्चे को पालन करने वाले हैं, हम अपनी तरफ से उस बच्चे को राइट वैल्यूज, राइट फूड, राइट आर्ट ऑफ लिविंग अपनी तरफ से उसको हम दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हम हैं हमारा बच्चा हमारे जैसा बने या हमसे बेटर बने। और अगर वो बच्चा जब तक हमारी जो हम उसको नॉलेज एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ के हैं जो हमारे एसेट्स हैं जो हमारे रिसोर्सेज हैं जब तक हम वो बच्चा हमसे लेता रहता है तब तक हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं कि भाई दिस चाइल्ड इज ग्रोइंग। लेकिन जिस दिन वो बच्चा बड़ा हो जाता है और अगर उसको ये लगे कि नहीं भाई आपकी जो चीज़ें हैं वो मेरी समझ में नहीं आती हैं, वो उस बच्चे ने अपने आप को आपसे अलग कर लिया। अब क्या हुआ? अब आपका जो रिसोर्सेज हैं वो उसके लिए अब डाइल्यूट होने शुरू हो गए। हम अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म अस्मि। तो इसका मतलब जो ब्रह्म की वैल्यूज हैं, जो ब्रह्म का एक्सपीरियंस है, जो ब्रह्म की वर्चूज हैं, वो हमारे अंदर भी आनी चाहिए। और अगर हम उस ब्रह्म को जो हमें पालता है, जिस दिन ये ब्रह्म चला गया सब खत्म हो गया, तो ब्रह्म की वजह से हम पल रहे हैं। जिस दिन वो ब्रह्म से हम अलग हो गए वो पाप की तरह डिफाइन किया गया है। ब्रह्म बीमार नहीं पड़ता, हम बीमार पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा पाप हो रहा है बीच में जहां हम पालन करने वाले की जो वैल्यूज हैं उससे हम अलग हो रहे हैं। ब्रह्म के अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता, हमारे अंदर होता है। तो इसका मतलब उसकी जो अभय रहने की वैल्यूज हैं ब्रह्म की, हम उससे अलग हो गए, पाप हो गया। ब्रह्म को चिंताएं नहीं होती हैं, हमें होती हैं। तो इसका मतलब ब्रह्म की जो चिंता रहित रहने की वैल्यू है, जो उसकी क्वालिटी है, वो हमारे अंदर नहीं है। कुछ पाप हो रहा है बीच में, हम पालन करने वाले से अलग हो रहे हैं। ब्रह्म को फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ में रहने वाले चले जाते हैं, उनका जीवन खत्म हो जाता है। ब्रह्म को रुलाई नहीं छूटती है, हमें छूटती है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म की जो डिटैचमेंट की क्वालिटी है वो हमारे अंदर नहीं आ पा रही है, क्योंकि बीच में कुछ पाप हो रहा है। तो हर वो थॉट, हर वो एक्शन जो हमको हमारे ब्रह्म की क्वालिटी से अलग करे वो पाप है। ज्यादा खाना, लालच में खाना, अभी हम लोग यही तो बात कर रहे थे कि पेट का साइज जो है वो इतना, हम अभी शुरू होने से पहले हम लोग यही बात करते कि पेट का साइज इतना सा होता है, लेकिन हम लोग लालच में खाते हैं और उसके बाद हम बीमार पड़ते हैं। तो ये पाप हो रहा है बीच में, इसका कोई सामाजिक पाप या धार्मिक पाप से मतलब नहीं है, और ये ओवरऑल हो रहा है। अब आप जो ब्रह्म की क्वालिटी है, वाइब्रेंट वाइटैलिटी, अबंडेंट हेल्थ, वो हमारे पास नहीं है, तो बीच में कुछ गैप हो रहा है। और यहां पर हम रामायण की जो साधना है जिसको हम समझने की, तो ये चौपाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि कर ही पाप। हम क्या सोचते हैं कि हमें दुख क्यों आया? क्योंकि बाहर मौसम चेंज हुआ तो हमारा शरीर खराब हो गया। चिंता क्यों आ रही है? क्योंकि सरकमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए चिंताएं आ रही हैं। भय क्यों लग रहा है? ईगो क्यों आ रहा है? क्योंकि सामने वाले ने कैसे हमको बुरा कह दिया, सामने वाले ने मेरी इज्जत कैसे नहीं करी। हमें अंदर से जो है वो ईगो हिट करता है, और कोई अगर छोड़ के चला जाए तो हमको रुलाई आती है, क्योंकि भाई जिसके साथ आप साथ भावल डाल करके आए हो वो छोड़ के चला जाएगा तो रुलाई कैसे नहीं आएगी आपको। तो रीजन हम अपने दुख का बाहर मान रहे हैं। शरीर बीमार है, उसका रीजन बाहर का वेदर चेंज नहीं है, उसका रीजन हम लोगों का चटोरापन है, मन में चिंताएं भरी हुई हैं, उसका रीजन बाहर की एडवर्स सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि ये सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में नहीं है, इसलिए हमको चिंताएं होनी शुरू हो जाती है। कोई बुरा कहता है तो उसका कारण उसका बुरा कहना नहीं है, हमारे अंदर का ईगो है तो हमको हर्ट किया। तो ये जो बीच में मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं, ये हमको और हमारा जो पालन करने वाला है, जिसको हम ब्रह्म कह लें, भगवान कह लें, राम कह लें, जो भी नाम देना चाहें, ये बीच में एक ड्रिफ्ट बन रहा है। और जो साधना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी ड्रिफ्ट को, जैसे मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि अगर हम बैठे हों और वहाँ पर एक आग जल रही हो, वो ब्रह्म है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो हीट है, वो हमारे तक आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो या तो हम उस आग से बहुत दूर हैं, लेकिन अगर हमको ये पता चल गया है कि भाई उसकी हीट हमको मिलनी चाहिए और फिर भी नहीं मिल रही है और हम नज़दीक भी हैं, तो इसका मतलब बीच में कुछ बैरियर्स बने हुए हैं। ठीक इसी तरीके से हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, क्या कहना चाहिए, डिटैचमेंट, ईगोलेसनेस, ये वो आग की क्वालिटीज़ हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए. और जो बीच में बैरियर बनाया हुआ है, लाइक आई सेड, चाहे हमको खाने की लालच हो, चाहे हमको बाहर के लोगों से एक्सपेक्टेशन हो, चाहे हमको पैसा कमाने की जो है वो एक हवस हो कि भाई यू नो सामान इकट्ठा करने की हवस हो, जो हमेशा कोट करता रहता हूँ, ये बीच के बैरियर्स हैं. तो तप की साधना हमको कहती है खाने को थोड़ा कंट्रोल करो, जो अपनी 5 उंगलियाँ हैं. जो सेवा की साधना है वो कहती है कि भाई आधा घंटा एक घंटा सेल्फलेस सर्विस करो, जो आपके पास है उससे आप शेयर करो, पैसा, जेवर, कपड़े लत्ते, जो भी उससे आप शेयर करो सेल्फलेसली. और फिर अपनी मेडिटेशन की साधना है कि दिन में 3 बार, नहीं 3 बार हो सके कम से कम 2 बार 15-15 मिनट आग बंद करके बैठना है. तो अब हम इसको आगे करें.
क्या क्या दुख है हम सबको?
हाँ,
रुच,
डिजीजेस,
लैक ऑफ हेल्थ,
यस,
शोक, चिंता, सैडनेस, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, भय, अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर, वियोग, पैंग्स ऑफ सेपरेशन.
तो मोटे मोटे सारे भी दुख जो हमारे हैं वो इन्हीं इस एक चौपाई में ह्यूमन काइंड के सारे दुख उन्होंने डिफाइन कर दिए. इतनी सारगर्भित ये कोटेशन है रामायण का. और इन सारे दुखों का एक ही कारण है, पाप. और पाप जो आपको पालन करने वाले से अलग कर दे. पालन करने वाला ये ब्रह्म है. जब ये ब्रह्म की क्वालिटीज हमारे स्थूल शरीर में हम नहीं महसूस कर पाते हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है. जब आपके भाई आप देखो ना, बच्चा जो है वो जब अपने आप को बड़ा होशियार, हम ही लोग जब बड़े हो गए तो फिर अपने आप को होशियार समझदार समझना शुरू कर दिया. तो पेरेंट्स ने बोला भाई ठीक है, फिर इफ़ यू डू नॉट नीड अवर वैल्यूज एनी मोर देन बी इट. फिर थोड़ी देर के बाद फिर पिटते हैं. फिर हम जैसे सुग्रीव के केस में हुआ था, वो बेचारा गया, वो फिर पिटा, फिर वो वापस आया. तो ये हम लोग के साथ भी होता है. तो आई थिंक ये एक एक्सरसाइज है जो हम लोग थोड़ा सा इसको करेंगे एवरी नाउ एंड देन, ताकि हम लोग समझ सकें कि क्या ये चौपाइयाँ हैं, इनके पीछे क्या इसका मतलब है, और कैसे इसको हम लोग जो है वो सीख सकें. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रेजेंट. अब इसके बाद हम लोग अपना जो भी क्वेश्चन आंसर करना है वो कर
लेते हैं. दिस इज गुड बिकॉज़ यू आर राइट कि सब कुछ इसी में है.
सब इसी में है.
भय, पूरा भय,
रुच, शोक,
डिजीज, चिंता, फ्यूचर,
हमेशा डर बना रहता है हम लोगों को कि पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए. बोल गुरुदेव.